Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Listeners, good evening and welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And today, of course, being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. To navigate you through today's show, I'm Sarabjit Kaur along with my co-anchor Subodh Mishra.
धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी, बहुत धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
इंडिया एड्स नियरली 17 करोड़ जॉब्स इन 6 इयर्स एज अनएम्प्लॉयमेंट डिप्स टू 3.2%। वुमेन लीड वर्कफोर्स सर्ज। ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक बाय 1,37,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम नवंबर। एंड डोमेस्टिक मार्केट्स टू फोकस ऑन कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक।
पिछले 6 सालों में भारत में लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई। बेरोजगारी घटकर 3.2% हुई। रोजगार में महिलाओं की अहम भागीदारी। ओपेक प्लस ने नवंबर से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 1,37,000 बैरल्स की बढ़ोतरी की घोषणा की। और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाक्रम पर।
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
आइए अब पहली खबर पे नजर डालते हैं कि देश में पिछले 6 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2017-18 में 47 करोड़ 50 लाख रोजगार सृजन हुआ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी दर जो वर्ष 2017-18 में 6% थी, वह 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई। मंत्रालय ने कहा कि यह रोजगार सृजन में मजबूती का संकेत है। इसी अवधि में युवा बेरोजगारी दर भी 17.8% से घटकर 10.2% हो गई है। इस बीच महिलाओं के कार्यबल में भी वृद्धि हुई है और पिछले 7 वर्षों में 1,56,00,000 से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। वर्ष 2023-24 में स्वरोजगार बढ़कर 58.4% हो गया है। मंत्रालय ने इसका श्रेय नवाचारों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को दिया है। इसमें भारत के लगभग 2,00,000 मान्यता प्राप्त नवाचार शामिल हैं। इनसे इस वर्ष के अंत तक 17,00,000 से अधिक नौकरियां और 118 यूनिकॉर्न बनने की संभावना है। मंत्रालय ने इस वृद्धि के लिए स्किल इंडिया, रोजगार मेला, पीएम विश्वकर्मा योजना, मनरेगा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना और लखपति दीदी योजना जैसी कई अन्य पहल को भी श्रेय दिया है।
और सुबोध जी, मैं देख पा रही हूँ कि ऋषि गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऋषि, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार जी।
नमस्कार
सर। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में हम म्यूचुअल फंड के लिए जाते हैं तो सरकारी बैंक में ऐसी कोई सुविधा नहीं बताते और प्राइवेट बैंक वाले बोलते हैं कि आपकी हम मीटिंग करा देंगे एजेंट के साथ, क्या हम वहाँ प्राइवेट में भी इनके साथ इनके एजेंट से मीटिंग ले सकते हैं इनसे म्यूचुअल फंड के लिए? हम क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड के लिए कुछ फंड देना था, क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट डीओ में है सरकारी बैंकों में, क्या हमें प्राइवेट बैंक में इसके लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा? अगर म्यूचुअल फंड हम वहाँ से एजेंट से चलवाते हैं तो इसके लिए क्या हमें उनके लिए फीस देनी पड़ती है या क्या इसका प्रावधान है, कृपया बताएं।
जी, तो पहला तो सवाल आपका कि क्या सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक, तो आप बिल्कुल प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं। सरकारी बैंक भी म्यूचुअल फंड्स के एजेंट्स की तरह काम करते हैं और प्राइवेट बैंक भी एग्जैक्टली वही काम करते हैं, तो आप प्राइवेट बैंक में भी जा सकते हैं। क्या आपको कुछ देना पड़ेगा, वहाँ बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, लेकिन वो बैंक अकाउंट उसी बैंक में हो जिसके एजेंट के थ्रू आप इन्वेस्ट करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका जो भी मौजूदा बैंक अकाउंट है, आप उसके थ्रू भी उसके ज़रिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आपका कोई खर्चा होगा, कुछ आपको उनको पैसे देने होंगे म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, आपका कोई खर्चा आपको डायरेक्ट एजेंट को नहीं देना। जब आप निवेश करते हैं तो आप एक उनको एजेंट्स को एक कमीशन मिलता है म्यूचुअल फंड हाउस से ही, तो वो कमीशन उनका म्यूचुअल फंड हाउस डायरेक्टली बैंक को उनके एजेंट्स को प्रोवाइड करता है, आपको खुद से कुछ नहीं देना। हाँ, वो अलग बात है कि वो पैसा अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट से ही कट के जा रहा होता है उनको, लेकिन वो डायरेक्टली आपको उनको नहीं हैंड ओवर करना होता, वो म्यूचुअल फंड उनको देगा। तीसरी बात कि वो जो एजेंट बता रहे हैं, देखिए आप बिल्कुल प्राइवेट बैंक के थ्रू करिए, बस ध्यान इतना रखिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। कभी कभी ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंड बताकर आपको कोई और यूलिप या कोई इंश्योरेंस का कोई प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, उससे थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको म्यूचुअल फंड दिया जा रहा है तो आप बिल्कुल शुरुआती निवेश है, आप थोड़े अनफेमिलियर हैं तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करें। अगर वो आग्रह करते हैं कि नहीं आप बड़ा अमाउंट लगाइए, तो भी मेरी सलाह ये है कि थोड़े छोटे अमाउंट से शुरू करिए, छोटे अमाउंट का SIP बनाइए, साल 6 महीने उसको चलाइए, थोड़ी आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी, उसके बाद अपने अमाउंट की मात्रा बढ़ाने के बारे में विचार करें।
जी, अगले कॉलर है उत्तर प्रदेश से HR गौतम, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
नमस्ते सर। हेलो।
हेलो जी, सवाल पूछें।
जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए तो वो क्या डीमैट से ले सकते हैं या SOA से? क्योंकि मैंने जो लिए हैं तो मेरे कुछ तो SOA से हैं, SOA में हैं और कुछ हैं डीमैट में। तो जो डीमैट में है, मैंने जब उसको MFC सेंटर पर उसको क्रॉस चेक किया तो उसकी जो कैश जो डीमैट में है वो उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 0 बता रही है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर?
देखिए, आप म्यूचुअल फंड दोनों ही तरीके अच्छे होते हैं, डीमैट और SOA, ये आपकी कन्वीनियंस की बात है। आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग शेयर्स में भी निवेश करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही डीमैट में एक ही जगह एक साथ रहें, तो वो डीमैट कुछ लोग हैं जो डीमैट मोड में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। अधिकतर लोग आज भी मेरी जानकारी में SOA फॉर्मेट प्रेफर करते हैं। थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे, आपको ये सुविधा होती है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद कर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं, तो SOA फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसको ऑपरेट करना थोड़ा आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है। डीमैट वाला उसमें थोड़ी सी आप बाध्य हो जाते हैं, एक डीमैट अकाउंट और वो जिस DP ID जिस ब्रोकर के साथ आपका, थोड़ी सी उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन ये आपकी सुविधा की आपकी कॉल है कि आपको क्या ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, दोनों ही मेथड ठीक है।
All right, Subodh, let's take a look at the next big story of the day. After October production hike, OPEC Plus, the group comprising the Organization of the Petroleum Exporting Countries, plus Russia and some smaller producers, has decided to raise oil output by 1,37,000 barrels per day, BPD, from November. OPEC Plus has increased its oil output targets by more than 2.6 million BPD this year, equating to about 2.5% of global demand. The shift in policy after years of cuts is designed to regain market share from rivals such as US shale producers. Last week, global crude oil price slumped heavily. Brent crude oil futures declined 8.1% this week to close at $64.53 a barrel, while US crude tumbled 7.4% during the week to end at $60.88 per barrel. Our next listener connected with us from Ghaziabad. Gaurav ji, namaskar. Apna sawal poochiye.
Good evening, Market Mantra team.
Good evening.
Madam, my question is about equity funds. हाउ विल दे फेयर बेटर इन कंपैरिजन टू प्रॉपर्टी, बिकॉज हम लोग कुछ वी हैव सम मनी व्हिच वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी आफ्टर इन्वेस्टिंग सो मच हैविंग सीन सो मच ऑफ ट्रबल. हाउ विल इक्विटी मार्केट इक्विटी म्यूचुअल फंड परफॉर्म इन कंपैरिजन टू ए प्रॉपर्टी मार्केट इन इंडिया.
Okay, see, that's a very broad-based question, and it could be anybody's guess. So I would rather refrain from giving a very direct answer, because I wish I had a very direct answer to which of the asset class would perform better. But if you look at the way things pan out, see, property, the first decision is that if you look at property, it's a big investment. You know, it's a lumpy investment. You make a very big commitment in a single property, while in equity, you can diversify. You can diversify across multiple companies, even markets, geographies. And it is more liquid. It is more manageable. And in terms of performance, see, look at equity investing as a bet on the Indian economy. If you think that in the next 5 years, people will be more prosperous than they are today, they would be earning more, they would be buying more cars, they would be spending more, then there is all the reason for you to keep a reasonably high degree of equity allocation in your long-term portfolio. Equity is known and proven to be the best asset class in terms of wealth generation over a long period of time. Added to it, the advantages of it being a very high scoring on liquidity parameter, scoring on the investability parameter, divisibility of your investment, because you can invest, as small as 500 or even 100 rupees. So on all these parameters, equity, to my mind, is a superior asset class for long-term wealth generation goal.
अगले कॉलर हैं बिहार से टिंकू. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
नमस्ते सर.
नमस्ते
सर. एक लड़का मेरा 10 साल का है, लड़की 4 साल का है. सर मैं उस बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा अमाउंट से SIP करना चाहते म्यूचुअल फंड. और सर मेरे पास बैंक दूसरा ग्रामीण बैंक वगैरह वगैरह है, तो ये सुझाव दीजिए किस तरह किया जाए जो बच्चे के लिए भविष्य के लिए अच्छा होगा.
जी देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपके बच्चे अभी 10 साल और 4 साल की उम्र के हैं और आप इतना जागरूक हैं, आप फाइनेंशियली इतने जागरूक हैं कि आप अभी से उनके भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं. तो अगर आप अभी बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरुआत करेंगे और डिसिप्लिन से लगातार करते रहेंगे, साल दर साल कोशिश करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा पाएंगे, तो ये सुनिश्चित है कि आप उनको एक अच्छा भविष्य, वित्तीय तौर पर एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे. जहाँ तक निवेश की बात है, आप कीप इट सिंपल. आप एक बहुत सिंपल सा प्लान शुरू करिए. दो इंडेक्स फंड, कोई भी दो अच्छे फंड जो निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करते हो, आप ऐसे कोई भी एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें मासिक तौर पर SIP के थ्रू निवेश करना शुरू करें. अभी आप इससे शुरुआत करिए, थोड़ी आपकी जानकारी बढ़ेगी. उसके बाद आप आगे थोड़ा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि इस पैसे को बाकी आगे कैसे स्प्रेड.
आशुतोष, अभी जो पिछले श्रोता ने सवाल पूछा था कि उनके घर के आसपास ग्रामीण बैंक वगैरह हैं, तो ऐसे में वो कहाँ कैसे SIP शुरू कर सकते हैं, जो आप सलाह दे रहे थे कि छोटी सी राशि से भी SIP शुरू करें, लेकिन कैसे करें.
जी तो मैं ये कहूँगा कि आप दो तरीके हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक तो आजकल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, आप अपने फ़ोन से घर बैठे बिना बाहर निकले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं निवेश के, जहाँ पे आप 5 मिनट में अपना KYC की जो फॉर्मेलिटी होती है, एक नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करके, अगर आपके पास आधार है, पैन नंबर है और बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट ऐसा जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आपको ये तीन चीज़ें जरूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए. अगर ये आपके पास हैं तो आप कर सकते हैं. अब बैंक अकाउंट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ग्रामीण बैंक उन्होंने बताया है. तो मैं ये सलाह दूंगा कि कोई भी सरकारी बैंक हो, बड़ा बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, छोटे से छोटे शहरों में स्टेट बैंक की ब्रांचेस फैली हुई हैं, तो उनके घर के पास जो भी स्टेट बैंक की ब्रांच हो, वो वहां अप्रोच करें, उनके माध्यम से.
कोई भी कमर्शियल बैंक जो भी हो.
जी, जो भी कमर्शियल बैंक उनके घर के पास नजदीक में हो, थोड़ा दूर भी हो, क्योंकि आप एक बार शुरुआत कर देंगे तो आपको बार बार उसमें, आपको ये नहीं है कि आपको बैंक से कुछ इंटरफेस करना पड़ेगा, बैंक में आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे. सारे इन्वेस्टमेंट्स आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकते हैं, बस शुरुआत करना एक बार जरूरी है.
एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम जयपुर. अमित जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए.
हाँ नमस्कार.
नमस्कार
सर, मैं बोल रहा था कि जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की जो परफॉर्मेंस होती है उसका पूरा दारोमदार एक तरह से फंड मैनेजर के ऊपर होता है, तो इसी फंड मैनेजर के बारे में जानना चाहते हैं कि फंड मैनेजर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, क्या पढ़ाई करनी होती है सर इसके लिए, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, और जैसे किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड मैनेजर होता है वो ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही होता है या वो जोनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे अलग अलग होते हैं. थैंक यू सर.
जी तो पहला सवाल आपका कि फंड मैनेजर, देखिए आपने ये ठीक पता है कि ओवरऑल फंड मैनेजर के ऊपर उसके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी होती है, बट ये एक अकेले सिर्फ एक इकलौते फंड मैनेजर का काम नहीं है, पूरी टीम का काम होता है. तो फंड को मैनेज करना एक टीम वर्क है. हाँ उस टीम का लीडर आप फंड मैनेजर को मान सकते हैं. जैसे कि एक टीम, एक इंडिया की टीम है तो कप्तान का उसमें काफ़ी अहम भूमिका रहती है, उस टीम की जीत में हार में वो टीम कैसा परफॉर्म कर रही है. लेकिन अकेला कैप्टन ही आपको जीत नहीं दिला सकता या हार का जिम्मेदार अकेला कैप्टन नहीं होता. तो उसी तरह एक पूरी टीम ऑपरेट करती है. फंड मैनेजर्स देखिए अनुभव, उनको इन्वेस्टमेंट मार्केट्स का अनुभव होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट्स में उनकी पढ़ाई. अधिकतर देखा गया है कि जो हिंदुस्तान में फंड मैनेजर्स हैं या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट CA CFA इस टाइप के MBA अच्छे इंस्टीट्यूट से इस टाइप के कोर्सेज में वो अपनी पढ़ाई कर आगे आते हैं. सिक्योरिटीज मार्केट में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, इक्विटी रिसर्च में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, मार्केट्स को गहराई से समझते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और कई साल मेहनत करने के बाद और अच्छा काम करने के बाद उन्हें फंड मैनेजर बनने का मौका मिलता है. तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो फंड मैनेजर को चाहिए होती हैं. और एक फंड का एक ही फंड मैनेजमेंट टीम होती है, कभी कभी एक सिंगल फंड मैनेजर होता है, कभी दो या तीन या पांच तक भी फंड मैनेजर किसी किसी फंड पे देखे गए होते हैं. लेकिन इसमें कोई जोनल स्टेट वाइज डिविजनल ऐसा कुछ नहीं होता. फंड्स एक ही, एक पूरे फंड का एक ही फंड मैनेजमेंट टीम होता है.
एंड नाउ लेट्स हियर फ्रॉम सुबोध, व्हाट्स द न्यूज़ फ्रॉम द GST फ्रंट.
जी सरबजीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से जारी है. यह समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है. अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को काफी लाभ प्रदान कर रहे हैं. आज हम गौर करेंगे कि चमड़ा और जूते चप्पलों पर कर कटौती से पड़ने वाले प्रभाव कैसे हैं.
सरकार ने परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए GST की दरों में कमी की है ताकि कम कीमतों पर उन्हें सामान मिल सके. नए GST सुधारों के तहत सरकार ने चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों पर GST की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है. नए सुधारों के तहत 2,500 रुपए तक की कीमत वाले जूते और चप्पल पर अब 5% GST लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा. इसके अलावा चमड़े के विभिन्न उत्पादों जैसे चमोइस चमड़ा, कम्पोजिशन चमड़ा, लेदर फाइबर और टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार चमड़े पर भी कर को 5% कर दिया गया है, जिस पर पहले 12% GST लगा करता था. इस कटौती से न केवल ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती होंगे बल्कि इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और युवा उद्यमियों को मदद भी मिलेगी. इस नए कर ढांचे से इन उत्पादों और इनसे जुड़े कच्चे माल पर भी GST की दरें कम हो गई हैं. इस कदम से चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा घरेलू और निर्यात बाजार में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धा मिलेगी. रोहन के साथ दृष्टि पुन्यानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
आशुतोष, जैसा हम अभी देख रहे थे और इससे पहले वाले कॉलर की बात याद कर रहा हूँ जिन्होंने कि फंड मैनेजर के बारे में पूछा था, और आप भी इतने समय से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि कैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है, कैसे SIPs ने हमारे बाजार को संभाला है और कैसे लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ी है, खास करके इन्वेस्टर्स में, कि मतलब अब वो भी सवाल कर रहे हैं कि फंड मैनेजर कौन होता है और कैसे बन सकते हैं. वाकई ये एक बहुत अच्छी तस्वीर सामने आती है.
जी बिल्कुल, देखिए इसकी बहुत डीप इसकी इम्प्लीकेशंस हैं और पॉजिटिव, क्योंकि हिंदुस्तान कन्वेंशनली एक सेवर्स तो रहे हैं हिंदुस्तान में, इन्वेस्टर्स नहीं रहे हैं। लोग पैसा जमा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमारे दादा परदादा की एज से वो हम गुल्लक में पैसे जमा किए जाते थे, फिक्स डिपॉजिट्स किए जाते थे, तो सेविंग तो हुई है, लेकिन उसने लोगों को बहुत वेल्थ जनरेशन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो निवेशक जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक सिर्फ सेव करना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टर होना ज़रूरी है। और आजकल म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स ने आपको मार्केट्स में इन्वेस्ट करना काफी डेमोक्रेटाइज कर दिया है। एक टाइम 90 का दशक ऐसा था कि जो लोग करना भी चाहते थे तो इक्विटी मार्केट सबके लिए ओपन नहीं होता था, इक्विटी में निवेश करना बहुत चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स ने उसको कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आपको जानकारी के अभाव है तो भी आप इक्विटी इन्वेस्टिंग से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपके लिए वो काम कर रहा है, एक काफी कॉस्ट इफेक्टिव रेगुलेटेड सेफ रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत चलाए जाने वाले प्रोडक्ट में। तो ये एक एवोल्यूशन है इंक्रीजिंगली, पहले लोग बात नहीं करते थे, लोगों ने बात करना शुरू किया, निवेश करना शुरू किया, और अब लोग फंड मैनेजर को देखने लगे हैं, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक करने लगे हैं, तो ये जागरूकता बढ़ रही है, एवोल्यूशन है, और मेरा ख्याल है काफी अच्छे संकेत है आने वाले समय में लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की इम्प्लिकेशंस के तौर पे।
सो इंडीड आशुतोष, अ वेरी एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमन मैन।
एब्सोल्युटली।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टेक अ लुक नाउ हाउ द मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू लुक नेक्स्ट वीक। After rising nearly 1% last week, the benchmark domestic equity indices is expected to be guided by global developments and quarterly results from IT giant TCS. Last week, the Sensex gained 781 points to end at 81,207 and the Nifty added 240 points to close at 24,894 on Friday. Starting next week, companies will begin unveiling their financial performance for the July-September quarter. Notably, Tata Consultancy Services, TCS, is scheduled to announce the second quarter results on October 9th. Meanwhile, the IPO arena is also buzzing with excitement as the Tata Capital IPO is slated to open next week. Additionally, investor will also keep an eye on updates about the LG Electronics IPO. Around 5 new IPOs, 4 in mainboard and 1 in SME segment. On the global front, investors remain watchful of the ongoing US government shutdown. Additionally, the U.S. Federal Open Market Committee will release minutes from its September 16-17 meeting. These insights will shed light on the Fed's stance on interest rates and monetary policy, providing critical cues for market participants worldwide. And taking a proactive step ahead of the festive season, the Director General of Civil Aviation, DGCA, has asked the airlines to augment flight capacities for the festive season by deploying additional flights to meet high demand. In response, IndiGo has informed that it has deployed 730 additional flights across 42 sectors. Meanwhile, Air India and Air India Express will run 486 additional flights across 20 sectors, and SpiceJet will operate 546 more planes across 38 sectors. The Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari, has urged farmers to adapt their cropping patterns in line with market demand to enhance productivity and income. He stressed the need to strike a balance between cultivation and consumer requirements to ensure better returns. Addressing a farmers' meeting in Bela at Nagpur, Gadkari appealed to farmers in Nagpur, Bhandara and Wardha districts to adopt modern technology for sugarcane cultivation, enabling sugar factories in the region to operate at full capacity.
आशुतोष, मार्केट में दरमियाने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत धन्यवाद।
And listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. India adds nearly 17 crore jobs in 6 years as unemployment dips to 3.2%. Women lead workforce surge. OPEC Plus announces oil output hike by 1,37,000 barrels per day from November, and domestic markets to focus on corporate earnings results and global developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. Market Mantra.